नमस्कार, आज हम 1961 में लिखे गए एक ऐसे अमेरिकी उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने अपने समय की नब्ज को कुछ इस तरह पकड़ा कि आज भी उसकी धड़कन महसूस होती है।
हाँ।
उपन्यास है वॉकर पर्सी का द मूवी गोअर, जिसे 1962 में नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था।
और इसके लेखक वॉकर पर्सी वो भी कोई आम साहित्यकार नहीं थे, वो पेशे से एक डॉक्टर थे, एक आप कह सकते हैं वैज्ञानिक दिमाग वाले इंसान।
हाँ, और टीबी की बीमारी ने उन्हें साहित्य और दर्शन की दुनिया में ढकेल दिया।
बिल्कुल, और शायद इसीलिए वो इंसान की आत्मा की बीमारियों को एक डॉक्टर की प्रिसिजन के साथ देख पाए। एकांतवास में उन्होंने सॉरेन कीर्केगार्ड और अल्बर्ट कामू को पढ़ा
और उसका असर साफ दिखता है।
हाँ, उपन्यास में कीर्केगार्ड के अंधा विश्वास या लीप ऑफ फेथ और कामू के बेतुके नायक की सीधी झलक मिलती है। हमारा नायक बिंग्स बोलिंग कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच ही फंसा हुआ है।
लेकिन पर्सी उस चमक दमक के पीछे छिपे एक गहरे खालीपन को, एक आध्यात्मिक बेचैनी को देख रहे थे। तो आज की हमारी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी कि जब जीवन में सब कुछ ठीक हो तब भी कुछ सही क्यों नहीं लगता। ये आधुनिक जीवन का वो खालीपन क्या है जिससे इंसान आज भी जूझ रहा है।
चलिए कहानी के नायक से ही शुरू करते हैं, जॉन बिक्सन बोलिंग, या जैसा सब उसे कहते हैं बिंक्स।
बिंक्स
वो लगभग 30 साल का है, एक सफल स्टॉक ब्रोकर है और न्यू ऑर्लियंस के एक अच्छे उपनगरीय इलाके में रहता है। यानी कागज पर उसकी जिंदगी
एकदम परफेक्ट है।
हाँ बिल्कुल, कोई त्रासदी नहीं, कोई बड़ी कमी नहीं।
लेकिन यही तो समस्या है, बिंक्स एक अजीब सी बेचैनी से गुजर रहा है जिसे वो एक नाम देता है मलेज।
मलेज, हाँ।
ये शब्द बहुत दिलचस्प है। आज के जमाने में शायद हम इसे बर्नआउट या लैंग्विशिंग कहते हैं। ये वो एहसास है जब सब ठीक होते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं लगता,
जब रोजमर्रा की जिंदगी एक दोहराव बनकर रह जाती है, बेस्वाद और बेमानी।
बिल्कुल, पर्सी 1961 में उस भावना को पकड़ रहे थे जिसे आज पूरी एक पीढ़ी महसूस कर रही है।
और इस मलेज से बचने का उसका तरीका भी उतना ही आधुनिक है।
सिनेमा?
हाँ, सिनेमा। उसके लिए फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो मानता है कि फिल्में असलियत को प्रमाणित करती हैं, सर्टिफाई करती हैं।
इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब जब वो अपने शहर की किसी गली को फिल्म में देख लेता है तो वो गली उसके लिए ज्यादा असली हो जाती है। वो अपनी जिंदगी को सीधे सीधे जीने के बजाय उसे एक स्क्रीन के जरिए महसूस करना चाहता है।
ये आज के सोशल मीडिया कल्चर जैसा नहीं है, जहाँ एक अनुभव तब तक असली नहीं होता जब तक वो कैमरे पे कैद ना हो जाए
या उसे ऑनलाइन लाइक ना मिल जाए।
सही बात है। बिंग्स भी अपनी जिंदगी का दर्शक ज्यादा है, किरदार कम, और इसी एहसास के बीच वो एक खोज पर है, द सर्च।
हाँ, पर ये कोई महान आध्यात्मिक खोज नहीं है, वो बस ये जानना चाहता है कि इस रोजमर्रा के उबाऊपन से बाहर निकलकर जीवन को सच में महसूस कैसे किया जाए।
और हर शांत यात्रा में कोई ना कोई तूफान लेकर आता ही है।
बिल्कुल, बिंग्स के केस में वो तूफान है उसका परिवार, खासकर उसकी आंटी एमिली। वो दक्षिण के पुराने संभ्रांत मूल्यों का प्रतीक हैं, सम्मान, कर्तव्य, परंपरा।
और वो बिंग्स की इस दिशाहीनता को देखकर बहुत परेशान है।
हाँ, वो चाहती हैं कि वो एक जिम्मेदार आदमी की तरह अपनी जगह बनाए। वो उसकी खोज को सिर्फ वक्त की बर्बादी मानती हैं।
आंटी एमिली उस पुरानी दुनिया की आवाज है जिसके पास बिंग्स की नई दुनिया की बीमारियों का कोई इलाज नहीं है।
सही कहा।
और यही कहानी में एक और बहुत जरूरी किरदार आता है, केट कटर। हाँ। बिंग्स की चचेरी बहन।
हाँ, केट। अगर बिंग्स का मलायज एक धीमी बौद्धिक बेचैनी है तो केट का मलेज एक तूफान है। वो गहरी चिंता, डिप्रेशन और खुदकुशी के ख्यालों से जूझ रही है।
बिल्कुल, वो उस खालीपन को महसूस करती है जिससे बिंग्स सिर्फ दिमागी तौर पर खेल रहा है। केट असल में बिंग्स का ही एक डरावना अक्स है।
वो दिखाती है कि अगर इस मलेज पर काबू ना पाया जाए तो इंसान किस हद तक टूट सकता है।
हाँ, और कहानी में तनाव तब बढ़ता है जब आंटी एमिली केट की मानसिक हालत से परेशान होकर बिंग्स को उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपती हैं।
और बिंग्स ये जिम्मेदारी लेता तो है पर आधे अधूरे मन से, या शायद उसे केट में अपनी ही बेचैनी का एक ज्यादा खतरनाक रूप दिखाई देता है,
शायद जिससे वो समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अभी भी अपनी ही दुनिया में खोया है। वो अपनी सेक्रेटरी के साथ एक छोटी सी यात्रा पर जाता है।
हाँ, जो उसे और भी ज्यादा अकेला और खोखला महसूस कराती है।
ये भागने की एक और कोशिश है जो नाकाम रहती है।
और फिर संकट गहराता है जब केट नींद की गोलियों की पूरी बोतल खा लेती है।
ये खुदकुशी की एक गंभीर कोशिश से ज्यादा मदद के लिए एक चीख थी।
बिल्कुल, इस घटना से परिवार हिल जाता है। और बिंग्स को पहली बार एहसास होता है कि केट का दर्द कोई दार्शनिक पहेली नहीं बल्कि एक जीती जागती दर्दनाक हकीकत है।
और यही कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है ना।
हाँ, बिंग्स को शिकागो एक बिजनेस ट्रिप पर जाना होता है और अचानक बिना किसी प्लानिंग के एक आवेग में
वो केट को अपने साथ चलने के लिए कहता है।
हाँ, वे दोनों बिना किसी को बताए न्यू ऑरलियंस से भाग जाते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि अपनी तयशुदा जिंदगियों और उम्मीदों से एक तरह का पलायन है।
और ये जो ट्रेन का सफर है,
ये तो इस उपन्यास का दिल है। उस बंद डिब्बे में दुनिया से कटे हुए वो दोनों पहली बार अपनी आत्मा एक दूसरे के सामने खोल कर रख देते हैं।
और फिर वो सीन आता है।
हाँ, जो आज तक याद है। केट जो अपनी जिंदगी के विकल्पों के बोझ से पूरी तरह टूट चुकी है, बिंग से एक हैरान करने वाली गुजारिश करती है। वो कहती है, तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्या करना है,
कब खाना है, कब सोना है, कब बाहर जाना है।
बिल्कुल,
ये कितना बड़ा पल है। वो अपनी पूरी आजादी, अपनी मर्जी बिंग्स को सौंप देती है।
एक इंसान जो विकल्पों के बोझ से इतना थक चुका है कि वो आजादी से ही डरने लगा है।
और बिंग्स जो हमेशा जिम्मेदारी से भागता रहा है,
इस भारी जिम्मेदारी को कबूल कर लेता है।
ये सिर्फ एक रोमांटिक रिश्ता नहीं है, ये एक दूसरे के वजूद को सहारा देने का एक नैतिक अनुबंध बन जाता है।
सही कहा, पहली बार बिंग्स सिर्फ एक मूवी गोअर नहीं बल्कि किसी और की जिंदगी में एक सक्रिय भागीदार बन रहा है।
शिकागो से लौटने पर असली तूफान का सामना होता है।
हाँ, आंटी एमिली, वो बिंग्स पर बरस पड़ती हैं। वो उस पर निराशावादी होने, अपनी विरासत से मुंह मोड़ने और गैर जिम्मेदार होने का इल्जाम लगाती हैं।
वो एक बहुत शक्तिशाली बात कहती है कि सबसे बड़ा पाप शून्य होना है,
किसी भी चीज में विश्वास न करना।
तो यहाँ आकर दो दुनियाएं टकराती हैं, आंटी एमिली की पुरानी उसूलों वाली दुनिया
और बिंग्स की नई खोई हुई दुनिया।
लेकिन इस बार बिंग्स लड़ता नहीं है, वो बहुत शांति और विनम्रता से उनकी दुनिया को अस्वीकार कर देता है।
हाँ, वो ये मान लेता है कि उसे अपना रास्ता खुद बनाना होगा, चाहे वो कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो। वो समझ जाता है कि आंटी एमिली के मूल्य महान हो सकते हैं, पर वो उसके समय की उस आध्यात्मिक बीमारी का इलाज नहीं कर सकते।
और यही उपन्यास का सबसे बड़ा विषय उभर कर सामने आता है, ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस।
बिल्कुल, पर्सी ये दिखाते हैं कि प्रामाणिकता कोई महान दार्शनिक विचार नहीं है जो किताबों में मिलता है,
बल्कि ये जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों में, किसी दूसरे इंसान के प्रति जिम्मेदारी उठाने में
और प्रतिबद्धता में पाया जाता है।
बिल्कुल, बिंग्स का एक निष्क्रिय दर्शक से केट के प्रति एक जिम्मेदार इंसान बनने का सफर ही उसकी प्रामाणिकता की यात्रा है।
अर्थ कहीं बाहर से खोजा नहीं जाता, उसे प्रेम और देखभाल के जरिए बनाया जाता है।
पर्सी एक तरह से कह रहे हैं कि आधुनिक जीवन अपने उपभोक्तावाद और सामाजिक दिखावे के साथ हमें खुद से और दूसरों से अलग कर देता है।
हाँ, और सिनेमा इसी अलगाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। अपनी कच्ची, अनिश्चित, उलझी हुई जिंदगी जीने के बजाय एक पहले से लिखी हुई साफ सुथरी प्रमाणित कहानी देखना हमेशा ज्यादा आसान लगता है।
उपन्यास का अंत कहानी के एक साल बाद एश वेडनेसडे के दिन होता है। हमें पता चलता है कि बिंग्स ने केट से शादी कर ली है।
उनकी जिंदगी शायद पारंपरिक तरीके से खुश नहीं है, लेकिन उसमें एक स्थिरता और एक दूसरे के लिए एक समझ है।
और एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, बिंग्स अब मेडिकल स्कूल में पढ़ रहा है।
और ये चुनाव बहुत कुछ कहता है ना। उसने स्टॉक मार्केट की अमूर्त अंकीय दुनिया को छोड़कर इंसानी शरीर की ठोस हकीकत को चुना है।
विचारों और सिद्धांतों की दुनिया से निकलकर सेवा और देखभाल की दुनिया में कदम रखा है।
ये उसके जीवन में एक मकसद की तरफ पहला ठोस कदम है। आखिरी दृश्य बहुत मार्मिक है। बिंग्स अपने छोटे विकलांग सौतेले भाई लोनी से मिलता है जो मर रहा है।
लोनी के पास बिंग्स की तरह दार्शनिक सवाल नहीं है।
नहीं, लेकिन उसके पास अपनी आस्था में एक अटूट विश्वास है जो उसे शांति देता है।
और फिर चर्च से बाहर निकलते हुए बिंग्स एक अश्वेत व्यक्ति को बड़ी गरिमा और विश्वास के साथ एश वेडनेसडे की रस्म के लिए चर्च में जाते हुए देखता है।
हाँ, और उस एक पल के लिए बिंग्स को पहली बार बाहरी दुनिया से गहरा जुड़ाव और एक उम्मीद महसूस होती है।
उपन्यास किसी जादुई समाधान या हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म नहीं होता।
नहीं होता। बिंग्स ने जीवन का कोई महान अर्थ नहीं खोजा है, लेकिन उसने जीने के लिए एक जीवन खोज लिया है।
एक ऐसा जीवन जो किसी दूसरे इंसान के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी पर आधारित है।
ये एक शांत, अस्थायी आशा की भावना के साथ समाप्त होता है, जो शायद किसी भी भव्य वादे से ज्यादा ईमानदार और सच्ची है।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अर्थ की खोज अक्सर तब शुरू होती है जब हम अपने ही जीवन में सिर्फ एक दर्शक बने रहने से इनकार कर देते हैं।
और उद्देश्य किसी महान रहस्य उद्घाटन में नहीं बल्कि किसी दूसरे इंसान की देखभाल करने के सरल लेकिन मुश्किल काम में पाते हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।